ओम शांति, ओम शांति। तो अभी का जो सत्र है वो मुरली रिवीजन का है। तो मुरली रिवीजन में हम आपस में एक दूसरे से मुरली की पॉइंट्स, ज्ञान की लेन देन करते हैं। तो अभी जो ज्यादा पीछे बैठे हैं, भले क्लास होगा तो उस समय बैठना, लेकिन अभी का सत्र है, हम आपस में ज्ञान की लेन देन करेंगे। तो अनुरोध है कि जो ज्यादा पीछे बैठे हैं, सामने खाली है सीट, भाई भी आ जाएं, और जो दूर दूर माताएं बैठी हैं, नजदीक आ जाएं। धन्यवाद। तो आप सभी ने आज की मुरली सुनी। हम सभी बाबा की मुरली रोज सुनते हैं। बाबा हम सभी बच्चों को ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। तो आज बाबा ने क्या कहा, सुनाइए। इसीलिए हमने आगे बुलाया है। आज बाबा ने क्या कहा, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, और पढ़ेंगे लिखेंगे तो दुनिया में भी कहावत है, और घूमेंगे फिरेंगे तो घूमेंगे तो नवाब नहीं बनेंगे, पढ़ेंगे तो नवाब बनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब, दुनिया में कहावत है। तो नवाब माना, वाह, बहुत ध्यान से आप लोगों ने मुरली सुनी है, बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। हाँ, नवाब माना बाबा ने आज कहा, दिल तख्त नसीन, भगवान के दिल तख्त नसीन बन जाएंगे। और जो आज बाबा के दिल तख्त नसीन बनेंगे, परमात्म दिल तख्त नसीन बनेंगे, वही भविष्य में क्या बनेंगे, उन्हीं को कौन सा तख्त मिलेगा, राज्य तख्त, विश्व का राज्य भाग, वो तख्त मिलेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। लौकिक में माताओं को अनुभव होगा, मैंने दो बच्चे हैं, एक बच्चा है कि वो बड़े प्यार से रोज स्कूल जाता है, और दूसरा है वो थोड़ा उसको डांटना पड़ता है, है ना, तो स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल नहीं जाता, वो रास्ते में ही इधर उधर घूम करके, पिकनिक करके फिर वापस आ जाता, और घर में बताता मैं स्कूल से आ गया हूं। तो जबरदस्ती माँ बाप उसके कान पकड़ के खींच के लेके जाएंगे, चल स्कूल, क्यों नहीं स्कूल जाना है। तो क्या होता है, जो प्यार से स्कूल जाता है, जिसकी रुचि होती है, वो तो पढ़ लिख करके अच्छा, उसको सर्विस लग जाता है, उसका जीवन अच्छा बन जाता है। और जो मार खा करके स्कूल गया, क्योंकि पढ़ाई में रुचि नहीं, तो बीच में ही उसका छूट जाता है, और फिर सारा जीवन, हाँ सारा जीवन खराब हो जाता है। ऐसे ही जो प्यार से आज बाबा पढ़ा रहे हैं, जो प्यार से पढ़ते हैं, पढ़ाई की रुचि है जिनके अंदर, तो बाबा ने कहा ना, मैं आया हूं सबको ले जाने, सब हमारे साथ चलेंगे, है ना, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, लेकिन एक है जो साथ साथ जाएंगे, प्यार से जाएंगे, हाँ, और जो प्यार से जाएंगे तो बाबा उनको प्यार से सतगी राजधानी में भेज देंगे, और जो मार खा के जाएंगे, है ना, तो धर्मराजपुरी में मार भी खाना और उच्च पद से भी वंचित, तो कौन सा रास्ता पसंद है, प्यार वाला। तो प्यार, तो जहां हमारा पढ़ाई में प्यार है, रुचि है, जो आज बाबा ने कहा पढ़ाई में ध्यान दो, ध्यान भी हमारा तब जाएगा जब पढ़ाई में रुचि होगा, हम प्यार से पढ़ेंगे। तो ध्यान देना माना चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेना, कौन है चार सब्जेक्ट? बहुत सुंदर, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो जो अच्छे विद्यार्थी, आप में से जो स्कूल में पढ़ाते हैं लौकिक में, कोई है इसमें टीचर? अच्छा, बहुत सुंदर। तो जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनकी क्या निशानी होती है? कॉपी पेन लेकर के आएंगे, बहुत सुंदर। हाँ, टाइम पे आएंगे, रेगुलर होंगे, पंक्चुअल होंगे। ऐसे नहीं कि वो रोज आता हो और रोज ही लेट आता हो, टीचर बोलते हो बाहर खड़ा हो जा तो लेट आया है, ऐसे तो नहीं ना। लेकिन वो पंक्चुअल होंगे, मेन बात। अब हम देखें, हम भी तो विद्यार्थी हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, रोज हम भागते हैं, 7 बज गया जल्दी चलो मुरली क्लास में, टीचर बहन मुरली सुनाने के लिए बैठ गई है हमारा। लेकिन अब यहां तो वहां पर डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर आदि पढ़ाई में हम कितना पंक्चुअल रहते हैं, और ये देवता बनने वाली पढ़ाई में आराम से कोई बात नहीं। कोई देखो, भगवान की पढ़ाई हाँ, जिसमें हम विश्व महाराजन और स्टूडेंट, वो स्टूडेंट देखो रात दिन एक कर देते हैं, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, है ना। और देवता बनने वाले स्टूडेंट रोज तो जाते हैं, एक दिन नहीं जाएंगे क्लास में तो क्या हर्जा हो जाएगा, है ना। अगर एक कोई स्लोगन भी पूछता है, आज का स्लोगन क्या होता, तो सिर खुजलाने लगते हैं, स्लोगन तो बहुत अच्छा था लेकिन याद नहीं आ रहा है। वहां पर हम मोटी मोटी किताबें रट डालते हैं और यहाँ एक लाइन स्लोगन भी याद नहीं रहता, आप सोचो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं पढ़ाई पर ध्यान दो। जो वो स्टूडेंट होते हैं, उन वो स्टूडेंट का ये होता है, हाँ मुझे हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेना है, 100% मार्क्स लेना। अच्छे विद्यार्थी का तो यही रहता ना लक्ष्य, 100% मार्क्स लेके दिखाना है। और जो कम, उस दुनिया में भी देखो जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं वो क्या सोचते हैं, हे भगवान मुझे किसी तरह पास कर देना, प्रसाद बांट दूंगा, मेहनत ना करनी पड़े और पास हो जाऊं। तो हम बाबा के बच्चे देखें कैसे, ऐसे तो नहीं है ना कि प्रसाद बांट दूंगा बाबा किसी तरह पास कर देना, कोई परीक्षा ना आवे, कोई समस्या ना आवे, है ना। अच्छा, जो बाबा की पढ़ाई है, ये पढ़ाई कितनी ऊंची है, पढ़ाई ऊंचे थे ऊंचा, और पढ़ाने वाला वो भी ऊंचे थे ऊंचा, और पढ़ाई से जो प्राप्ति मिलती है वो ऊंचे थे ऊंची, और पढ़ने वाले वो हम भी ऊंचे थे ऊंचे, है ना। तो पढ़ाने वाला भी ऊंचे थे ऊंचा, पढ़ाई भी ऊंचे थे ऊंची, पढ़ाई से प्राप्ति भी ऊंचे थे ऊंची, है ना, पढ़ने वाले भी ऊंचे थे ऊंचे। तो पेपर कैसा आना चाहिए, अब इसमें नहीं बोल रहे सभी पेपर में घबराते हैं, पेपर कैसा आना चाहिए, अभी आप ही बोल रहे हैं ऊंचे थे ऊंचा। अब नहीं कहना बाबा बड़ी समस्या आ गई, बड़ी हाँ, बड़ा पेपर आ गया, ऐसा तो नहीं बोलेंगे माताएं, आगे से तो नहीं बोलेंगे ना, बाबा बहुत समस्या आ गई, बहुत बड़ा पेपर आ गया, क्या करें, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। और बाबा ने कहा बच्चे घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा टीचर बना है ना, वो कौन है टीचर, तुम्हारा बाप ही तो है हमारा बाप ही हमारा टीचर है एग्जाम लेने वाला। और उसने क्या किया, नकल करने की पूरी छूट दे दी, दी है कि नहीं दी, उस एग्जाम में नकल करने की छूट होती है, नहीं होती। और इस एग्जाम में, देवता बनने वाली एग्जाम में, नकल करने की पूरी छूट। और क्या क्वेश्चन आने वाला है वो भी बाबा ने पहले से बता दिया, बताया कि नहीं बताया। लेकिन हम कैसे हैं कि नकल करने की भी, बड़े नशे से बोल रहे हैं नकल तो करना ही है ना, किसको नकल करना है, बाबा को नकल करना। बाबा ने कहा ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्या करें कैसे करें इसमें नहीं जाना, बस बाबा को देखना है, जो बाबा ने किया वही करते जाना है। तो देवता बनने की पढ़ाई और नकल करने की पूरी छूट, एग्जाम में क्या आने वाला है वो भी बाबा ने बता दिया, लेकिन फिर भी पास होने वाले 108 है ना। तो अच्छी रीति पढ़ाई, तो अभी हम इस पर चिंतन करेंगे, अच्छी रीति पढ़ाई करना माना क्या। जो आज बाबा ने कहा पढ़ाई पर ध्यान दो, ध्यान देना माना क्या। तो चार स्टेप हैं, एक है मुरली सुनना, है ना, हम सब मुरली सुनते हैं सन, लेकिन एक है कि चलो अच्छा, कई बार हम अरे वही मुरली तो सेंटर पर जाकर के सुनना है, घर में मोबाइल में आ रहा है, इंटरनेट पे आ रहा है, यही हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन कहाँ सुनना है, सेंटर पर जाकर के, क्योंकि अच्छा जब कोरोना आदि कोई कारण होता है, मना किया जाता है, तो वो बात अलग है, लेकिन जब ऐसी कोई बात नहीं है, सब सेंटर पर जा रहे हैं, तो ये बाबा की बनाई हुई दिनचर्या है, बाबा की श्रीमत है, सेंटर जैसा वाइब्रेशन, सेंटर जैसा जो संगठन है, वाइब्रेशन है, वातावरण है, वो घर में मिलेगा। तो सुनना कैसे सुनना है, पहला सेंटर पर जाकर सुनना है। दूसरा, कई बार मुरली में ये शब्द आता है कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, आता है कि नहीं आता मुरली में। तो जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के बैठेंगे तो मुरली का पूरा रस मिलेगा, मुरली का पूरा सुख मिलेगा, मुरली की एक एक बात अंदर में समाती जाएगी, और इस फीलिंग के साथ कि हमें सुना कौन रहा है, कौन सुना रहा है, उस नशे में स्थित होकर के सुने। अच्छा हमें चार्ट भरना होता है, तुम कहते हाँ मुरली सुनी, हाँ सुना, योग किया, अमृत बिला योग किया, हाँ किया, लेकिन मुरली सुनी, हाँ मैंने सुना, लिख तो दिया, लेकिन अपने आप से पूछो क्या मैंने सुनी, सुनने का मतलब क्या। कई बार माताओं को ज्यादा अनुभव होगा इस बात का कि माताएं बोलती ना, मेरा बेटा ना मेरी सुनता ही नहीं है, कितना भी बोलो कितना भी कहो वो सुनता ही नहीं है। माँ बोल रही है, बेटा सुन भी रहा है, लेकिन फिर भी माँ बोलती है कि सुनता ही नहीं मेरा बेटा। कब बोला, जब उस बेटे ने किया नहीं, है ना, माँ ने बोला और बेटे ने किया नहीं, तो माँ ने क्या बोला, बेटा सुनता ही नहीं। हमने मुरली सुनी लेकिन किया नहीं तो किया नहीं तो अब आपने आपसे पूछ, तो जिस दिन आपने किया तो उसी दिन लिखो हाँ मुरली सुनी, अगर नहीं किया तो मुरली नहीं सुनी। अभी ऐसे हम पूछेंगे हाँ मुरली सुनी तो सब हाथ खड़ा करेंगे, अच्छा फिर आगे अगर आपने आज की मुरली से क्या किया प्रैक्टिकल में, तब फिर जीरो। तो मुरली सुनने का मतलब समझा क्या है, मुरली सुनने का मतलब करना। अच्छा तो पहली बात है सुनना, है ना। तो जब हम आत्म अवमानी स्थिति में स्थित होकर के बैठते हैं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं इस स्वमान में स्थित होकर के बैठते हैं, भगवान आकर के पढ़ा रहा है इस स्वमान में स्थित होकर के बैठते हैं, और बाबा के एक एक महावाक्य पद्मों की कमाई का आधार है इस स्मृति में होकर के बैठते हैं, तो मुरली की एक एक बात अंदर में समाती जाएगी। अच्छा दूसरा है, पहला है सुनना, दूसरा है सुनाना। जो हमने, अगर हम चाहते कि मुरली की बात याद रहे तो हम आपस में एक दूसरे से लेन देन करें आज, और हम सारा दिन तो बातें करते हैं, तो क्या मुरली की बातें नहीं कर सकते। हम क्लास से जा रहे हैं, आपस में जा रहे हैं, दो लोग हैं, हम आपस में अच्छा आज बाबा ने क्या कहा, आपको कौन सी बात अच्छी लगी, हाँ आपस में एक दूसरे से पूछो। तो जब हम आपस में एक दूसरे से ज्ञान की लेन देन करते हैं, पूछते हैं, तो वो बात हमें याद रहती है। और कई बार हम ये भी कहते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला सोचेगा हाँ ये बड़े बहुत ज्ञानी बने आए हैं, मुरली की पॉइंट है ना, कई बार हमें नाराज ना हो जाए और वो ये ना सोच ले कि बहुत बड़े ज्ञानी अपने आप को कहलाते हैं, समझते हैं मुरली की पॉइंट। तो आप उस भाव से पूछो, आज का भल आपको याद है लेकिन आप बड़े नम्रता के साथ, आज का मुझे वरदान नहीं याद आ रहा है, आप जरा बताएंगे वरदान आज का क्या था। अब उसको याद तो है नहीं तो वो थोड़ा सा सोचेगा, तो आप सुना दो उस समय, अच्छा ये वरदान, क्या ये वरदान था आज का, तो वो भी कहेगा हाँ हाँ यही वरदान था, क्योंकि वो भी सोचेगा चलो छुट्टी मिली है ना। तो कहने का भाव, आप युक्ति से भी किसी को ज्ञान सुना सकते हो। तो आपस में ज्ञान की लेन देन, सुनना और सुनाना। तीसरा है समझना। हम ज्ञान दूसरे को तब सुना सकते हैं जब उसको हम खुद समझते हो। अगर हमें ही समझ में नहीं आया तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे, दूसरों को क्या बताएंगे। और समझने के लिए चिंतन करना, उस पर हम चिंतन करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चिंतन करना। जब हम चिंतन करते हैं तो वो खजाना हमारा अपना बन जाता, वो फिर कभी भूलता नहीं है, वही हमें दूसरों को सुनाने के समय काम आता है। जिसको चिंतन करने की आदत है उसका योग बहुत अच्छा हो जाता है ना, व्यर्थ खत्म हो जाते हैं, आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। तो चिंतन करने की आदत डालनी चाहिए है ना। चिंतन करना अर्थात जब हम चिंतन करते हैं तो हमें समझ में आता है। तो तीसरा है समझना, और चौथा है स्वरूप में लाना। जब हम समझते हैं, अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तो वो हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे कर्म में आ जाता है, हमारे व्यवहार में आ जाता है। तो पहला सुनना, दूसरा सुनाना, तीसरा समझना, और चौथा स्वरूप में लाना। इन चार विधियों को अपनाओ, देखो आप मुरली की पॉइंट। नहीं तो क्या होता है, कोई कहता आज का सुनाना वरदान, तो हम उसको क्या बोलते, जरा हिंट दे दो, अंदर में है, अंदर में है लेकिन बाहर से निकल नहीं रहा है, एक अक्षर बता दो शुरुआत का। और जैसे वो एक अक्षर बताता है, सारा का सारा इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंदर रहता है, हम सुने रहते हैं लेकिन हम चिंतन नहीं करते। तो चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो पहला ज्ञान में फुल मार्क्स लेना है, तो ज्ञान सुनना, सुनाना, समझना, स्वरूप में लाना है ना। ज्ञान स्वरूप जीवन हमारा कहां तक बना है, कितने वर्ष से ज्ञान में चल रहे हैं वो बड़ी बात नहीं, लेकिन ज्ञान हमारे जीवन में कितने समय से चल रहा है वो बड़ी बात है। जिसको बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट, एक है 10 वर्ष से ज्ञान में चल रहा है, एक है जो एक ही वर्ष से ज्ञान में चल रहा है, लेकिन 10 वर्ष वाला जाकर के बाहर नातेदार रिश्तेदार के यहाँ भोजन कर लेता है, और 1 वर्ष वाला नहीं, बाबा ने कहा है ना किसी के हाथ का भोजन नहीं करना है, पवित्र ब्राह्मण आत्माओं के हाथ का भोजन खाना है, वो बाहर का भोजन छोड़ दिया, तो कौन कौन गया आगे ज्ञान में, कौन गया, 1 वर्ष वाला है ना। तो अब इसमें 10 साल 20 साल 30 साल की बात नहीं, लेकिन बात है कि ज्ञान को अपने स्वरूप में हमने कहां तक लाया है, ठीक है ना। एक मिनट के लिए पूरी तरह से आप शरीर से डिटैच होंगे, स्वयं को देखेंगे। मैं बहुत तेजस्वी आत्मा भ्रकुटी के बीच चमक रही हूं, मुझसे चारों ओर तेज प्रकाश फैल रहा है, फील करेंगे मैं बहुत बहुत पवित्र, संपूर्ण पवित्र, परम पवित्र, पवित्रता का सूर्य। मेरे अंग अंग से प्योर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं बहुत बहुत शक्तिशाली ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर सर्वशक्तिवान से कंबाइंड सर्वशक्तिवान बाबा की अनंत शक्तियां मुझ में समा रही। मैं चैतन्य लाइट हाउस और माइट हाउस मुझसे लाइट माइट की तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही है। ओम शांति। तो पढ़ाई पर ध्यान देना माना चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेना और पहला ज्ञान के सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेना है तो स्वयं के अंदर देखना है कि मेरा जीवन ज्ञान स्वरूप कहां तक बना है। दूसरा, योग के सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेना है तो योग में एकाग्रता कहां तक रहती है। जो बाबा कहते जब चाहे एक योगी आत्मा जब चाहे जहां चाहे जिस स्थिति में चाहे जितना समय चाहे अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर ले तो वो स्टेज हमारी कहां तक बनी है। तीन बातें चेक करना है। जो बाबा कहते हैं एक सेकंड में डिटैच हो जाओ तो क्या मैं इस देह और देह की दुनिया से एक सेकंड में डिटैच हो जाता हूं परम धाम पहुंच पाता हूं। दूसरा, जितना लंबे समय तक चाहें, ऐसे नहीं एक सेकंड में पहुंच तो गए परम धाम में दूसरे सेकंड फिर नीचे आ गए, वो तो नहीं है। हम जितना लंबे समय तक चाहें उतना लंबे समय तक परम धाम में हम रह सकते हैं। अच्छा, दूसरा भी है, आप एक सेकंड में डिटैच भी हो जाते हैं लंबे समय तक परम धाम में रहते भी हैं। तो तीसरी चेकिंग, हमारी स्टेज क्या है। जब हम परम धाम में पहुंच जाते हैं तो वहां की स्टेज क्या है, पावरफुल है कि साधारण है कि मध्यम है। तो ये तीनों बातें चेक करनी है। तो योग का रिजल्ट है हमारे अंदर, अगर हम यथार्थ योगी हैं तो हमारे जीवन से क्या दिखाई पड़ेगा। योग से हम भरपूर होते हैं ना, तो हम हल्कापन खुशी आनंद सुख है ना, ये सारे दैवी गुण हमारे जीवन से दिखाई पड़ेंगे। संस्कारों में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, रूहानियत दिखाई पड़ेगी, दिव्यता दिखाई पड़ेगी, ये सब योग का रिजल्ट है। समझो हम है ना योग में फुल मार्क्स लिया, अगर हमारी योग में संपूर्ण एकाग्रता है तो योग में फुल मार्क्स लिया, और धारणा में संपूर्ण पवित्रता की धारणा, संपूर्ण पवित्रता में सारे दैवी गुण आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना पवित्रता सर्व गुणों की जननी है, माँ जहां माँ है वहां तो सारे बच्चे है ही। तो संपूर्ण पवित्रता की धारणा, संपूर्ण पवित्रता अर्थात किसी भी विकार का अंश भी ना हो। अगर एक भी विकार का अंश है तो पिछले रविवार की अव्यक्त मुरली याद करिए, बाबा ने कहा एक भूत आ गया तो भूतों में बड़ी यूनिटी होती है, वो सारे भूत आ जाते हैं उसके पीछे है ना। तो सारथी समझ करके चलोगे तो कोई भी भूत नहीं आएंगे। तो अब हम देखें संपूर्ण निर्विकारता, कोई अंश भी तो नहीं है। कई बार हम ऐसे अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, बन जाएंगे। नहीं, बाबा ने कहा अपने आप को चलाना नहीं है, और जो अपने आप को इस समय चलाएंगे वो अंत में हाय मेरा भाग्य कहकर के चिल्लाएंगे। तो अंत के चिल्लाने से मुक्त होने के लिए अपने आप को श्रीमत मर्यादा के ऊपर चलाना है, आलस्य अलबेलेपन में नहीं। और चौथा, सेवा में फुल मार्क्स लेना है तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, सेवा में अभिमान ना आए। जो आज बाबा ने प्रश्न में कहा, सर्विस में वृद्धि ना होने का कारण क्या है? देह अभिमान। कहीं ना कहीं अभिमान आता है, और जिसको अभिमान आता है उसको अपमान की बड़ी जल्दी महसूसता होती, छोटी छोटी बातों में वो फीलिंग करेगा। तो अभिमान ना आए। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, ये तीन चीजें हैं जो पूरा मार्क्स लेने की चाबी है, फुल मार्क्स लेने की चाबी। और अगर मैं पनाया कि मैंने किया, मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, है ना, मेरी बुद्धि बहुत अच्छा है, मैं इतना सेवा करता हूं, इतना देता हूं, ये करता हूं। तो बाबा की अव्यक्त मुरली के महावाक्य हैं, बाबा ने कहा कितना भी सेवा कर लो, रात दिन जाग करके सेवा कर लो, भूख प्यास सहन करके सेवा कर लो, लेकिन यदि मैंपन का अभिमान आया तो बाबा ने कहा सेवा का कच्चा फल खा लिया। बाबा ने उसमें ये कहा था कि आपने 95% कट कर दिया, अभिमान आया कि मैंने किया। और यदि ये आया कि नहीं बाबा ने कराया, मैं तो निमित्त मात्र हूं, करण करावनहार बाबा है, बाबा सब कुछ है, बाबा बाबा अगर आपको याद रहा, यहां तक कि मैं तो ये समझता हूं कि बाबा कराता भी बाबा है तो बाबा करता भी है। हमारे अंदर तो करने की भी शक्ति नहीं कि मैं कुछ कर सकूं, हाँ? तो कराने वाला भी वही, तो करने वाला भी वही। जब ये हमारे अंदर फीलिंग होती तो सेवा में 100% मार्क्स जमा हो जाता है। तो बाबा ने कहा कभी भी देह भान ना आए, अभिमान ना आए, हाँ? और देह अभिमान आया तो फिर सेवा की वृद्धि नहीं होती। इसलिए बाबा बार बार क्या बताते हैं, क्या बनो? देही अभिमानी, देही अभिमानी स्थिति, माना हमारे अंदर कभी भी मैंपन ना आए, निमित्त भाव, बाबा कराने वाला है, मैं निमित्त हूं। अच्छा, और आगे बाबा ने क्या कहा? कभी भी किस में नहीं आना है? हद में नहीं आना है, बेहद की भावना रखनी है, हाँ ना? हद ये क्या है, मैंपन और मेरापन क्या है? और जो बच्चे सच्चे दिल से सेवा करते हैं ना, बाबा उन पर बलिहार जाता है, बाबा भी उन पर कुर्बान जाता है। वैसे तो बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है, पढ़ाई में बाबा किसी पर आशीर्वाद नहीं करते हैं, लेकिन जो दिल से बाबा की यज्ञ की सेवा करते हैं, ऑटोमेटिक बाबा से वो वरदान, शक्तियां, आशीर्वाद वो ले लेते हैं। वैसे आज एक और है, दूसरा लेटर टू गॉड, इसलिए, लेकिन एक बहुत प्रेरक प्रसंग मैं आपको सुनाऊं कैसे बाबा बलिहार जाता है जो सच्चे दिल से सेवा करते हैं। प्रैक्टिकल घटना, बात उस समय की थी जब ज्ञान सरोवर नहीं था और शांतिवन भी उस समय इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा स्थान था। तो पांडव भवन में बाबा आते थे, पांडव भवन में, ओम शांति भवन में बाबा आए थे। और तो एक बर्तन विभाग में हमारे एक प्रेम भाई हैं, वो बर्तन विभाग संभालते हैं। तो उस समय कोई बड़ी पार्टी आई हुई थी और इधर ओम शांति भवन में बाबा मिल रहे थे मधुबन निवासियों से। फिर और उधर वो भी मधुबन निवासी वो बेचारे बर्तन धुलाई करवा रहे थे, उनके मन में आया कि ये क्या सेवा है, मैं यहाँ बर्तन धुलाई करवा रहा हूँ लेबरों से, वहां बाबा मधुबन वालों से मिल रहा है, बाबा क्या ऐसे आया मन में आया कि चलो ये बर्तन तो बाद में धुलाई करवा लूंगा, जाकर के बाबा से मिल लेते हैं। फिर अंदर में संकल्प आया अगर बाबा से मिलने चला जाऊंगा तो ये भी बर्तन सारा रह जाएगा, फिर पार्टी किसमें खाना खाएगी। तो वो सोचा चलो पूरी सेवा कंप्लीट करके ही जाते हैं। जब वो पूरी सेवा कंप्लीट करके ओम शांति भवन की ओर आए तो उसी समय बाबा के जाने का गीत बज गया, जब बाबा जाने वाला गीत, तो रास्ते में सुना जाने वाला गीत। तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, बाबा से दृष्टि अंत में बाबा से दृष्टि लेकर के ही आ जाएंगे। अभी देखिए बाबा को तो पता है ना कि कौन बच्चा क्या करके आया है, बाबा का गीत बज रहा है, सब योग में बैठे हुए बाबा है ना जाने वाला, लेकिन बाबा की दृष्टि पड़ी कि ये बच्चा गेट से अंदर प्रवेश किया। तो बाबा के बाजू में मोहिनी बहन बैठी हुई थी, बाबा ने मोहिनी बहन को कहा उस बच्चे को जरा बुलाना स्टेज पर। तो मोहिनी बहन ने कहा कि प्रेम भाई आओ बाबा आपको बुला रहे हैं। तो कहा मैं गया स्टेज, बात मत पूछो क्या खुशी है कि भगवान किसी को स्टेज पर बुला ले। तो बाबा बुलाया और बाबा ने फिर सब मधुबन वालों को टोली में लड्डू दिया था, इनको भी दिया, इनके हाथ में रखा एक लड्डू रखा, फिर दो रखा, फिर तीन रखा, चार, पांच, और जब उनका दोनों हाथ भर गया तो फिर क्या उन्होंने वो लड्डू जो है अपने कुर्ते में डाल लिया। और बाबा फिर उनके कुर्ते में डालने लगे, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार जब कुर्ता भी लटकने लगा वो भी फुल हो गया और ओम शांति भवन में लोग तालियां पीट रहे हैं। इस प्रकार बाबा ने 25 लड्डू रखा, कहां सबको एक एक लड्डू मिला उसको 25। फिर बाबा ने कहा ये बच्चा बहुत दिल से सेवा करता है, ये बच्चा बहुत दिल से सेवा करता है। अभी बताओ, लोगों ने पूछा भाई क्या करके आए हो, बाबा आपके ऊपर तो मेहरबान हो गया। कहा क्या करके आए हो, बर्तन धुलाई करवा रहा था। तो सेवा कुछ भी हो अगर हमारी स्थिति महान है, है ना, हम दिल से बाबा के यज्ञ में सेवा कर रहे हैं, जहां भी कभी भी आपको सेवा, आप ये सोचो ये बाबा की मेहरबानी है हमारे ऊपर इस सेवा का चांस हमें मिला, दूसरे को क्यों नहीं मिला, दूसरे को क्यों नहीं कहा गया, हमें कहा गया, बाबा हमारा विशेष भाग्य बनाना चाहता है। लेकिन कई बार हम कहते हैं मैं ही दिखाई पड़ता हूँ क्या, और दूसरे कोई नहीं है क्या, हमें ही कहा जाता है, हमें ही बोला जाता है। लेकिन उस समय ये हमें सोचना चाहिए वाह मेरा भाग्य, जरूर मेरी सेवा पसंद आती तभी तो मुझे कहा जाता है, बाबा मेरा विशेष भाग्य बनाना चाह रहा है तभी हमें कहा जाता है। तो इस प्रकार से सेवा में जब भी सेवा मिले तो अपने आप को बहुत अपना भाग्य समझना चाहिए। तो जब सेवा में हमारे अंदर नम्रता रहेगी, निर्मानता रहेगी, है ना, मैपन से मुक्त रहेंगे, सेवा में सुख देने की भावना रहेगी, तब पूरा मार्क्स जमा होगा। और बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई पड़ता है वो क्या होगा, आज है कल वो विनाशी है, वो खत्म होने वाली चीज है। जिस चीज में ज्यादा बुद्धि जा रही हो ना उस चीज को अपने सामने लाओ और अपने आप को समझाओ, ऐ आत्मा अभी से ही संभल जाओ, यही चीज तुम्हें अंत में धोखा देगी, इसलिए अभी से ही इस चीज से बुद्धि निकाल लो। कोई संबंध की बात नहीं है कि संबंध में हमारी बुद्धि जा रही है, कोई छोटी सी चीज में भी, खाने पीने की चीज में, पहनने की चीज में, साधन में, किसी भी चीज में बुद्धि गई तो वही अंत समय खींचेगी, रुकावट डालेगी, वही अंत समय धोखा देगी। तो हमें खुद के टीचर बन करके खुद समझाना है और अपने आप को परिवर्तन करना है। और सदा खुश रहने के लिए क्या करना है? ज्ञान की धारणा करनी और करानी है। धारणा स्वरूप जीवन में हो, है ना, यही स्टेज है। मैंने देखा दादियों के सामने बड़े बड़े महामंडलेश्वर आकर के नतमस्तक और भरी सभा में, महात्माओं की सभा में कहते थे कि आप लोग न केवल कहते हैं लेकिन आप लोग करते हैं, आप लोगों की कथनी करनी एक है। कोई महात्मा बोले, महात्माओं की सभा में बोले, बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने भगवान को पा लिया, हम तो ढूंढते रह गए। आप हन ऐसे आप लोगों ने भगवान को पा लिया, हम आपके पीछे पीछे हैं, हम आपके साथ हैं। आप सोचे तो कथनी करनी एक। और आगे बाबा ने क्या कहा वरदान में, क्या बोला? तपस्या के द्वारा अपने विकर्मों और तमोगुणी संस्कारों को खत्म करने वाले तपस्वी मूरत भव। याद करो कल की मुरली, कल के वरदान में तपस्या का क्या अर्थ बताया बाबा ने? तपस्या अर्थात याद की यात्रा, तपस्या अर्थात बुद्धि का तीसरा नेत्र, आत्मा के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे। एक आत्म अभिमानी बनने की तपस्या, ये सबसे बड़ी तपस्या है। स्वयं को संपूर्ण सतो प्रधान बनाने की तपस्या, स्वयं को संपूर्ण पवित्र बनाने की तपस्या, ये तपस्या है। तो जब हम तपस्वी मूरत बन करके रहेंगे, जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे, तब निराकार जो परमात्मा है उसकी करंट आएगी, और जब उसकी करंट आएगी तब हमारे विकर्म विनाश होंगे, तब हमारे संस्कारों में परिवर्तन दिखाई देगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है देह से न्यारे होने की बात, अशरीरी बनने की बात। अच्छा, और आगे बाबा ने क्या कहा? स्लोगन क्या करना है? संस्कारों के टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस। तो बालक कहां, इसके ऊपर चिंतन करना, बालक कहां बनना है, मालिक कहां बन जाना है। बाबा कई बार कहते हैं कि जब अब कोई सेवा का प्लान बनता है, मीटिंग होती है, तो मालिक बन करके अपना विचार दो, लेकिन जब वो फाइनल रिजल्ट आउट होता है कि भाई ऐसे करना है, तब उस समय बालक बनकर के स्वीकार कर लो। उस समय मालिक नहीं बनना कि नहीं जैसा मैंने कहा वैसा ही होना चाहिए, नहीं। तो कहां बालक बनना है, कहां मालिक बनना है। तो जब हम बालक बन करके रहेंगे, है ना, अब संगठन है, संगठन में बालक बन जाना नहीं, संगठन में बालक बन जाना है, क्योंकि सबके अपने अपने विचार है ना। और जब व्यक्तिगत में मालिक बन जाना है, अपने आप को मालिक बन करके चलाना है, अपने आप को मालिक बन करके देखना है। तो इस प्रकार से ये मुरली की कुछ बातें थी। रोज मुरली से एक बात लेकर के उसके ऊपर चिंतन करने की आदत डालो, और ये रखो कि आज बाबा ने कहा है तो ये हमें करना ही है। अच्छा, अभी हमारा दूसरा आज का प्रोजेक्ट है। सभी के पास डायरी पेन है? किनों के पास डायरी पेन है? अच्छा, थोड़े लोगों के पास है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है, डायरी पेन नहीं है तो। वैसे मुझे कहा गया है कि आधा घंटा लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र लिखना, लेकिन सबके पास तो है नहीं, लेकिन आपस में एक दूसरे का अगर थोड़ा मदद करे, नहीं तो आप अपने मन से ही आप ऐसे अनुभव करो कि हम पत्र ले, वैसे तो वो बताया नहीं टीचर कि अच्छे स्टूडेंट तो अपनी डायरी पेन लेकर के आते हैं, है ना। कोई बात नहीं, आप सब बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, अपने मन में ही, जिनके पास डायरी पेन नहीं है वो अपने मन में ही, है ना, बाबा से बातें करेंगे। क्या करेंगे पहले आप सुनना, आप अपने सामने एक संबंध जो आपको बहुत प्यारा संबंध लगता है वो संबंध आप अपने सामने लाओ। आप मां के संबंध में, बाप के संबंध में, या टीचर के संबंध में, सतगुरु, जो संबंध आपको बहुत अच्छा लगता है वो संबंध अपने सामने ला करके उसी संबंध के नाम पर आपको लेटर लिखना है। आप बाबा ने आपके लिए क्या किया, या आप क्या करना चाहते हैं, जो कुछ भी जो आपके मन में बात आता है आप बिल्कुल साक्षी हो जाओ एकदम, है ना, और बाबा को सामने लाकर के, वो संबंध सामने लाकर के आपको लेटर लिखना है जो आपको मिला है, या आपकी जो तमन्ना है उस संबंध के प्रति, आप क्या करना चाहते हैं, या बाबा से आपको क्या क्या मिला है, क्या क्या प्राप्तियां हुई है, बाबा ने आपको किस किस प्रकार का सहयोग किया है, जो कुछ भी है उस संबंध से आपको लेटर लिखना है। और जिनके पास डायरी पेन नहीं है वो मन में उस संबंध को सामने ला करके मन में बातें करेंगे। तो आपके पास कितना समय दें, 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट है आपको भगवान के नाम, वैसे तो हम बच्चों के नाम, देहधारियों के नाम तो खूब लेटर लिखे, अनुभवी तो हैं, खैर आजकल तो मोबाइल के जमाना, लेटर वेटर पूरा हो गया, लेकिन लेटर तो आपने कभी लिखा तो था ना, अनुभव तो है ना, आज भगवान के नाम लेटर लिख दीजिए, है ना, वो संबंध ला करके। तो आप अपने मन की बात जो लिखना है वो संबंध लाइए और लिखिए, 5 मिनट समय है, उसके बाद फिर आगे बताया जाएगा कि आगे क्या करना है, ठीक है। और जिनके पास नहीं वो शांति में बैठ करके बाबा से उस संबंध से रूरिहान करेंगे, बातें करेंगे। ओम शांति।
दिल की दवा तुम कलम डुबोकर, बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ, यादें जिगर की सियाही लेकर, हाले दिल सब सच लिखता हूँ। तुझे एक खत लिखता हूँ, शाम सवेरे याद में तेरे, बीते दिन और बीते रहना, तेरे खयाल को ही देखे ये मेरे नैना, लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ।
दिल की दवात में कलम डुबो कर,
बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। बना रहे सबकी का सार यही है बाबा, सम्मुख मिलने को लिखता हूँ।
दिल की दवात में कलम डुबो गए,
बाबा तुझे एक खत लिखता।
लगता है आप लोग लिखने में पूरी तरह से मगन हो गए हैं। हो गया या अभी हो गया ना? अच्छा, तो हमने अपनी बात बाबा को बताई तो बाबा भी तो कुछ बताना चाह रहा होगा कि नहीं? बातें तो दोनों तरफ से होती है ना। एक मित्र बोलता ही रहे और दूसरे को हम मौका ही ना दें बोलने के लिए, दूसरा भी मित्र तो बात करना चाह रहा है। जब हम मित्र की बात कहो या किसी संबंध की बात कहो, जब मिलते हैं तो एक तरफ से थोड़ी बात होती है, दोनों तरफ से बातें होती है। तो अभी आपने अपने दिल की बात बाबा को सुना दी लेटर के माध्यम से, है ना? अब आपको बाबा क्या कह रहे हैं? दूसरी बात यह है कि अब उसी संबंध से बाबा आपको क्या कह रहे हैं, बाबा की क्या आशाएं हैं, बाबा आपसे क्या चाहते हैं, हा? अब दूसरा ये आपको लिखना है। एक है आपने बाबा को लेटर लिखा, अब दूसरा है कि बाबा आपको लिख रहे हैं। भला डायरी आपकी, पेन आपका, हाथ आपका है, लेकिन आप बिल्कुल साक्षी होकर के जैसे कि बाबा आपसे लिखवा रहे हैं, बाबा के अंदर में क्या क्या बातें हैं। बाबा के अंदर में बहुत सारी बातें हैं, आपसे बातें करने के लिए 5000 वर्ष के बाद आप मिले हैं, तो बाबा की भी बहुत इच्छा है। तो बाबा क्या आपसे चाहते हैं, बाबा की क्या आशाएं हैं आपसे, बाबा की क्या उम्मीदें हैं, है ना? उस संबंध से आप बाबा आपसे कुछ बातें कर रहे हैं, वो साक्षी होकर के वो लिखिए, जैसे बाबा आपके हाथों द्वारा वो लेटर लिखवा रहे हैं, लिखवा बाबा रहे हैं, आप निमित्त मात्र लिख रहे हैं। तो बाबा क्या चाह रहे हैं, अब ये भी 5 मिनट, ठीक है ना? तो जिनके पास डायरी पेन नहीं है, अब वो आप अपने सामने बाप दादा को लाओ और बाप दादा आपको कुछ बता रहे हैं, वो आप सामने इमर्ज करो, है ना? अपने सामने लाओ कि बाबा मेरे से क्या क्या बातें कर रहे हैं। अभी तो आपने बोला ना बाबा को, अपनी सारी बातें बताई, अब बाबा की सुनिए, बाबा आपसे क्या क्या कह रहे हैं। 5 मिनट समय।
खुदा का खत आया है, मीठा संदेश लाया है। खुदा का खत आया है, मीठा संदेश लाया है। लिख लिखा है मीठे प्यारे बच्चों, सदा अपना ध्यान रखो। लिखा है मीठे प्यारे बच्चों, सदा अपना ध्यान रखो। मिट रहा है गम का अंधेरा, आ रहा स्वर्ग सवेरा। खुदा का खत आया है, मीठा संदेश लाया है। का समय आ रहा, सृष्टि की अंतिम बेला, कयामत का समय आ रहा। छोड़ो अब अलबेलापन, छोड़ो अब अलबेलापन। पल पल वक्त ये जा रहा, धरती के चेतन तारों को खुदा ने याद किया है। लिखा है मीठे प्यारे बच्चों, सदा अपना ध्यान रखो। मिट रहा है गम का अंधेरा, आ रहा स्वर्ग सवेरा। खुदा का खत आया है, मीठा संदेशा लाया है। सारे जग का भार है तुम पे, तुम फरिश्ते जहान के। सारे जग का भार है तुम पे, तुम फरिश्ते जहान के। कर दो पावन किरने फैला के, कर दो पावन किरने फैला के। शिव पिता के ध्यान से नैनों के नूरे दुलारे, पलकों पे तुम्हें बिठाया है। लिखा है मीठे प्यारे बच्चों, सदा अपना ध्यान रखो। मिट रहा है गम का अंधेरा, आ रहा स्वर्ग सवेरा। खुदा का खत आया है, मीठा संदेशा लाया है। जाना अपने घर को एक ठिकाना है वही। भूल न जाना अपने घर को एक ठिकाना है वही। अपने स्वरूप को याद रखना, अपने स्वरूप को याद रखना, खुदा का फरमान है यही। तुम ही रे सबसे अनोखे, ताज पे तुम्हें सजाया है, लिखा है मीठे प्यारे बच्चों सदा अपना ध्यान रखो। मिट रहा है गम का अंधेरा, आ रहा स्वर्ग सवेरा, खुदा का खत आया है, मीठा संदेश लाया है, खुदा का खत आया है, मीठा संदेश लाया है, खुदा का खत आया है, मीठा संदेश लाया है।
ओम शांति। तो सभी ने लिख लिया, तो एक लेटर लिखा, आप अपने दिल की बात, अपने मन की बात बाबा को लिखा, तो वो आपकी पर्सनल बात है, उसके बारे में मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन जो बाबा ने आपको कहा, दूसरा लेटर बाबा ने आपसे लिखवाया, तो बाबा ने आपको क्या कहा, बाबा आपसे क्या चाहते हैं, वो तो आप सुना सकते हैं। है कोई जो सुनाना चाहेंगे? 5 मिनट समय है। अगर कोई अपना कि बाबा ने मुझे ये प्रेरणा दी, बाबा ने मुझे ये कहा, तो है, अगर कोई हो तो हाथ खड़ा करो। अच्छा, एक दो लोग, ठीक है। यहाँ माइक रखा होगा, यहाँ पर माइक है, यहाँ पर आकर के यहां से आप सुनाइए, सब कोई सुनेंगे। कोई बात नहीं है, इधर आ जाइए, यहां पर माइक रखा है, और यहां से खड़े होकर के सुनाइए, बाबा ने आपको क्या प्रेरणाएं दी, क्या कहा, क्या चाहते हैं बाबा आपसे।
ओम शांति। बाबा ने जो मुझे प्रेरणा दी, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें विश्व का मालिक बनना है और निर्विकारी बनना है, पवित्र बनना है, तो सर्वगुण संपूर्ण बनना है, ये बाबा की इच्छा है। बाबा हमें सतयुग का अधिकारी बनाने आए। मेरे प्यारे बच्चे, श्रीमत का पालन करते रहना, श्रीमत एक लक्ष्मण रेखा की तरह है, इस पर चलते रहना, श्रीमत इसका कभी उल्लंघन नहीं है करना, अपने चाल चलन को रॉयल रखना है, अपना खान पान शुद्ध रखना है, तुम ही भविष्य के देवी देवता हो, विश्व की तुम्हें सेवा करनी है, और जो देवताओं के अंदर गुण है वो तुम्हें धारण करने हैं, और तुम्हें एक लायक बच्चा बनना है, तुम्हें भगवान का बच्चे हो वो तो करके दिखाना है। और बाबा ने कहा, बच्चे तुम चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ। ओम शांति।
बहुत बढ़िया, अति सुंदर।
ओम शांति। बाबा ने हमें बताया, बच्चे मेरे बने हो, मेरे बने तो अच्छे मार्ग पर चलना, पवित्रता धारण करना है, किसी को दुख नहीं देना, क्रोध नहीं करना, ब्रह्मा भोजन खाना, और श्रीमत पर चलना है, बाबा का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना है, और बाबा का नाम बाला कर, बाबा का नाम बाला करो और चिंता नहीं करनी के सब बाबा को दे दो, मैं बाबा बैठा हूँ, अच्छे बच्चे, ओम शांति।
वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अच्छा ठीक है, आ जाइए, जल्दी आ जाइए।
ओम शांति। मेरे को हमेशा से एक ही रिश्ता सबसे अच्छा लगा है, वो है दोस्ती का रिश्ता, क्योंकि वो रिश्ता हम खुद चुनते हैं।
हाँ जी हाँ जी।
और बाकी रिश्ते तो ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं बाबा से हमेशा कहता हूँ, कोई रिश्ता नहीं चाहिए, ना कोई साथी चाहिए, तू मिल गया मेरे खुदा, बस तेरी छत्र चाहिए, छत्र छाया चाहिए।
वाह वाह वाह।
तेरे दिल तख्त पे थोड़ी सी जगह चाहिए। तो बाबा कहता है, जो मेरे को लगा कि बाबा ने मेरे को बोला,
हाँ जी,
कि दोस्ती नहीं, बाप से सर्व संबंध निभाओ, बाप बाहे पसारे खड़ा है, बाबा हमेशा साथ, मतलब बाबा के साथ लेके चलना है तो कदमों में पदम की कमाइयां है ही है। ओम शांति।
बहुत बढ़िया, अच्छी बात, चलो बहुत अच्छा। सभी, वैसे तो सभी को बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव हुए हैं, और अनुभव क्योंकि बाबा आपसे बातें कर रहे हैं, है ना, तो जरूर बाबा की बहुत सुंदर प्रेरणाएं हर एक के अंदर में आता है कि हम जाकर के सुनाएं, लेकिन समय की सीमा है। तो आपको अच्छा लगा लेटर लिखना, लगा ना, जिनको लगा जरा हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये रोज का नियम बनाएंगे, रात में सोने के पहले बाबा को लेटर लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि सारा बोझ आपका उतर जाएगा, आप बहुत हल्के हो जाएंगे, नींद भी अच्छी आएगी, अमृत वेले का योग भी अच्छा होगा, सुबह फ्रेश नींद से उठ जाएंगे, है ना, क्योंकि बाबा ने कहा ना, भाई बता रहे थे ना कि बाबा ने कहा तुम चिंता मत करो, फोटो में एक है ना कि तुम चिंता मत करो, मैं बाबा बैठा है, तो हमें चिंता करने की जरूरत है। कई बार बाबा कहते कि मेरे बच्चे और उदास, मेरे बच्चे और मेहनत, मेरे बच्चे और चिंता करे, तो बाबा ने कहा ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं ना, तो बाबा भी हमें कैसा देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा 63 जन्मों से तो आप मेहनत करते आए, बोझ उठाते आए, चिंता करते आए, अब ये सारे बोझ मुझे दे दो और आप कैसे रहो, हल्के रहो। बाबा कितने भुजा वाला है, 1000 भुजा वाला, वो कहता मैं 1000 भुजा वाला हूं, मुझे बोझ दे करके आप बिल्कुल हल्के हो जाओ। बाबा पूछते कौन ज्यादा सहयोग करेगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला। फिर बाबा कहते फिर तुम 2 भुजा वाले की तरफ क्यों देखते हो, क्यों नहीं मेरा सहयोग लेते, तो अब क्या करना है, 1000 भुजा वालों को साथी बना करके रखना है। तो जैसे छोटे बच्चों में होता ना, कुछ भी बातें आती अपने माँ बाप को बताकर वो हल्के हो जाते हैं, तो ऐसे हमें भी बाबा को बता करके हल्के रहना है। ठीक है, ओम शांति।